ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप सुनेंगे प्रेम अवतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता।
हम दिव्यानुभव के अंतर्गत हमारी चमत्कार से संस्कार वीडियो श्रृंखला से ली गई एक अलौकिक कहानी के साथ ही साथ आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के तहत संत श्री कबीर दास जी के जीवन पर आधारित एक ड्रामे का एक भाग भी सुनेंगे। आज हम अवतार वाणी के अंतर्गत सत्संग का प्रभाव विषय पर श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग तथा गान सरिता के अंतर्गत भगवान गणेश की वंदना करता हुआ एक गीत भी प्रसारित करेंगे।
तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत चमत्कार से संस्कार रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से श्री विक्टर कानो जी के जीवन काल का एक प्रसंग लिया गया है। प्रस्तुत है इसका पहला भाग।
सच्चाई ये है कि भगवान के पास वास्तव में कोई नहीं जाता, बल्कि भगवान ही स्वयं हमारे पास चल कर आते हैं। फिर उसके बाद ये हम पर निर्भर करता है कि हम चाहें तो अपना सारा जीवन उन्हें समर्पित कर दें। और अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो भगवान हमारे माध्यम से चमत्कार दिखाते हैं। विक्टर कानू की कहानी भी ऐसी ही है, जिसने उन्हें सियेरा लियोन के राजदूत से भगवान के विशुद्ध प्रेम का दूत बना दिया। विक्टर उन गिने चुने अफ्रीकी लोगों में से थे जो पिछली शताब्दी के 70 के दशक में अपने जीवन के शिखर पर थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने और उच्च पदों पर आसीन रहने के बाद उन्हें ब्रिटेन में सियेरा लियोन का राजदूत नियुक्त किया गया और उन्हें स्वीडन और नॉर्वे की भी जिम्मेदारी दी गई। उनके पास सब कुछ था, शानदार रोल्स रॉयस कार और ड्राइवर, एक आलिशान बंगला, बड़े बड़े रुतबेदार दोस्त, पार्टियों और कार्यक्रमों में व्यस्त जिंदगी। लेकिन उन्हीं दिनों सियेरा लियोन में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये सब कुछ एकाएक उनके पास नहीं रहा। उनकी नौकरी खत्म हो गई, उनकी धन दौलत प्रभाव मित्र दोस्त कुछ भी नहीं बचा। कठिनाइयों के इन थपेड़ों ने विक्टर को अपनी जड़ों की ओर लौटने को मजबूर कर दिया। विक्टर अब अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल ढूंढने लगे। इसी बीच सन 1975 में उन्होंने एक अजीब स्वप्न देखा। इसमें उनके लिए एक संकेत था। उनके स्वप्न में दो देवदूत आए और उन्हें लेकर नीले आकाश में उड़ने लगे। वे उड़ते हुए एक लंबी बाहरी दीवार वाले विशाल प्रांगण के एक बड़े द्वार पर पहुंचे। उन देवदूतों ने विक्टर को उस अनजान स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। विक्टर ने उस प्रांगण में देखा कि वहां सभी देशों के लोग मौजूद थे। वहां लोगों के दुख व तकलीफ दूर हो रहे थे और प्रवचन तथा आध्यात्मिक बातें हो रही थीं। विक्टर को वहां उनके पूर्वज भी मिले, जिन्होंने उनसे अपनी पारंपरिक मातृभाषा में बात भी की। जब विक्टर का सपना टूटा तो उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। इस स्वप्न से पहले विक्टर एक पब में अपने मित्रों के साथ शराब का सेवन करते थे, लेकिन इसके बाद ऐसी जीवन शैली में विक्टर की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई और उन्होंने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया। नौकरी छूटने के बाद विक्टर ग्रेट ब्रिटेन की एक आध्यात्मिक संस्था में शामिल हो गए। वे लोगों के दुख तकलीफें दूर करने का आध्यात्मिक अभ्यास करने लगे। वह कुछ समय बाद इस संस्था के अध्यक्ष भी बन गए। सन 1978 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में एक महिला पादरी ने अपनी वार्ता में बताया कि क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा नौजवान है जो अब ठीक वही काम कर रहा है जैसा 2000 साल पहले ईसा मसीह किया करते थे। उस नौजवान का नाम है सत्य साईं बाबा। ये नाम सुनते ही विक्टर के हृदय में एक नई चेतना, एक नए जीवन का संचार हुआ। इसके बाद उन्होंने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्य साईं बाबा एक चमत्कारी व्यक्तित्व को पढ़ा और ये पुस्तक उन्हें जीवन के एक नए मार्ग पर उड़ा ले गई। फरवरी सन 1980 में एक रात को सोने से पहले उन्होंने साईं बाबा को याद करके प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि साईं बाबा, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप ईश्वर का अवतार हैं। मैं और मेरी पत्नी आपकी शरण में आना चाहते हैं और यदि आप हमें स्वीकार करते हैं तो कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए। और उसी रात स्वप्न में विक्टर को साफ साफ संकेत मिल गया। विक्टर ने स्वप्न में देखा कि वो अपने प्रार्थना कक्ष में बैठे हैं और तभी नारंगी चोला पहने खुले घुंघराले बालों वाले दिव्य साईं बाबा विक्टर की मेज पर प्रकट हो गए। विक्टर को यह विश्वास हो गया कि बाबा ने उन्हें और उनकी पत्नी को अपनी शरण में ले लिया है। उसी वर्ष विक्टर और उनकी पत्नी कुछ अन्य भक्तों के साथ पहली बार बाबा के दर्शन के लिए भारत आए। जैसे ही विक्टर की कार प्रशांति निलियम के गोपुरम द्वार पर पहुंची तो विक्टर को अपने पहले स्वप्न में देखे गए दृश्य याद आ गए। उन्होंने फौरन पहचाना कि ये वही द्वार था जहां वर्षों पूर्व देखे गए स्वप्न में देवदूतों ने उन्हें छोड़ा था। उसी दिन विक्टर को स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। दर्शन में स्वामी ने विक्टर से कहा कि वे अगले दिन अपने बेंगलुरु स्थित वृंदावन आश्रम जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि विक्टर और उनकी पत्नी भी वहां चलें। बेंगलुरु के आश्रम में स्वामी ने विक्टर और उनकी पत्नी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया। उनके साथ वहां व्हीलचेयर पर एक इटालियन महिला भी प्रतीक्षा कर रही थी। साक्षात्कार कक्ष में स्वामी ने उस महिला से कहा कि वो व्हीलचेयर छोड़कर खड़ी हो जाए और स्वामी की तरफ चलकर आए। वो महिला हिचकिचाई मगर जब उसने कोशिश की तो वो उठ खड़ी हुई और बिना किसी सहारे के स्वामी तक चलकर जा पहुंची। वो महिला पूरी तरह रोग मुक्त हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर विक्टर स्तब्ध और निशब्द हो गए। बाबा में उनका विश्वास अब चट्टान की तरह दृढ़ हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पांच मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। वर्ष 1989 में विक्टर के सामने परीक्षा की एक और घड़ी आई। इसका वर्णन इस श्रृंखला के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत आपने श्री विक्टर कानू जी के जीवन काल का एक प्रसंग सुना। इसका दूसरा भाग अगले सप्ताह प्रसारित किया जाएगा।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम भगवान द्वारा सत्संग का प्रभाव विषय पर उनके उद्गार सुनेंगे।
बुद्धि कर्मानुसारिणी, మనము చేసేటువంటి కర్మలయందు ఉత్తమ అధమ అనేటువంటి కర్మలను పురస్కరించుకొని మానవుని యొక్క బుద్ధి అభివృద్ధి పొందుతుంటాది.
బుద్ధి కర్మానుసారిణి అర్థాత్ బుద్ధి కర్మో కా హి అనుసరణ కర్తీ హై. హమారే ద్వారా కియే గయే కర్మో సే వో అచ్చే హై యా బురే ఉస్ అనుసార్ మనుష్య కీ బుద్ధి వికసిత్ హోతీ హై.
దుష్కర్మల చేత దుర్బుద్ధిగా రూపొందుతుంది.
బురే కార్యో సే దుర్బుద్ధి ప్రాప్త హోతీ హై.
సత్కర్మల చేత సద్బుద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది.
అచ్చే కార్యో సే సద్బుద్ధి ప్రాప్త హోతీ హై.
కనుక మన మంచి చెడ్డల బుద్ధికి మన చర్యలే మూల కారణం.
ఇసిలియే హమారి అచ్చి బురి బుద్ధి కే లియే హమారే కార్యకలాప్ హి జిమ్మేదార్ హై.
కనుకనే ఇట్టి చర్యలను సరైనటువంటిగా రూపొందింపుకొనుటకు సత్సంగములు అత్యవసరము.
ఇసిలియే ఇన్ కార్యకలాపో కో సహీ దిశా దేనే కే లియే సత్సంగ పరమావశ్యక్ హై.
ఆ సంఘమును పురస్కరించుకునియే మన బుద్ధులు అభివృద్ధి నొందుతుంటాయి.
ఉస్ సంఘ కే ప్రభావ సే హి హమారీ బుద్ధి వికసిత్ హోతీ హై.
టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్. ఈ కంపెనీ ఎలాంటిదో నీవు అలాంటి వాడని నిరూపించవచ్చు.
జైసీ సంగత్ వైసీ రంగత్. తుమ్ జిస్ ప్రకార్ కీ సంగతి మే రహతే హో తుమ్ వైసే హి బన్ జాతే హో.
కనుక మంచి వారితో మనం స్నేహం చేసి మంచివారి యొక్క సంపర్కం చేత మంచి గుణములను పోషించుకోవాలి.
ఇసిలియే అచ్చే లోగో సే మేల్ బఢాకే ఉన్కీ సంగతి సే సద్గుణో కా వికాస్ కరో.
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने श्री भगवान की मधुर वाणी में सत्संग का प्रभाव विषय पर उनके उद्गार सुने.
अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार. आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का चौथा भाग प्रस्तुत करेंगे. किरण जी भगवान बाबा के अनंतपुर स्थित महाविद्यालय संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं.
मैं बचपन में बहुत शैतान हुआ करती थी, चंचल हुआ करती थी, अपने बहनों से भी ज्यादा. तो नाक में दम रहता था माँ के. पिताजी भी समझाने का प्रयास किया करते थे तो पनिशमेंट के रूप में, और कैसी पनिशमेंट, कितनी सुंदर पनिशमेंट थी कि पिताजी ने सोचा ये अगर भगवान का लिटरेचर या उनकी किताबें भाषण पढ़ेगी तो शायद सुधार हो जाए. तो सबके सो जाने के पश्चात मेरी ये पनिशमेंट थी कि मैं एक भगवान का भाषण डिस्कोर्स पढ़कर ही सो.
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी पनिशमेंट थी.
सब बिस्तर पर ले जाया करते थे और मैं उन दिनों तीन ही शायद सत्ताईस स्पीक्स के वॉल्यूम्स निकले थे या चार. तो हमारे पास जो थे उनमें से एक भगवान का डिस्कोर्स पढ़ती थी और फिर ही सोती थी. साथ में ये भी बता दूं कि तब हमारी इलेवंथ क्लास हो गई थी, हायर सेकेंडरी केंद्रीय विद्यालय से हो गई थी, और इन दिनों प्लस टू का रिवाज नहीं था. ग्यारहवीं के पश्चात ही हम कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे, ऐसा रिवाज था तब. तब हमारा ट्रांसफर अंबाला में हो चुका था पिताजी का, और इन दिनों ट्रांसफर्स के कारण बीच में हमारे जो इंटीग्रेटेड हायर सेकेंडरी होता था 9, 10, 11 में, वो केंद्रीय विद्यालय में तब ऐसा रिवाज था कि 9, 10, 11 में केवल हमें तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे इंटीग्रेटेड. बाकी सारे जैसे सोशल साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स, वो सब छूट जाता था बोर्ड एग्जाम होने के पश्चात. तो हम केवल इन तीन विषयों को ही पढ़ा करते थे. वो बीच में ट्रांसफर होने के कारण हमें बहुत कठिनाई हुई थी कि एक बार तो हमें अपना एक विषय ही बदलना पड़ा और तीन साल का खत्म करना पड़ा. फिर बीच में इन तीन सालों में एक बार ट्रांसफर के कारण हमें अपना माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ा और इंग्लिश में एग्जाम लिखना पड़ा. तो बहुत कठिनाई हुई थी. तो पिताजी की इच्छा थी कि हमें अब आगे की बड़ी पढ़ाई में इस प्रकार का व्यवधान ना आए, कष्ट ना हो, इसलिए उनके मन में था कि हमें हॉस्टल में डालें. ताकि हम बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ाई अपना खत्म कर सकें। इसके पीछे एक और कारण ये भी था कि मेरे माता पिता दोनों आज के पाकिस्तान से, रावलपिंडी और लाहौर से थे, तो पार्टीशन के बहुत से ट्रामास में एक ये भी बहुत बड़ा ट्रामा था कि दोनों अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। पिताजी ने 10th क्लास का जो की परीक्षा जो कुरुक्षेत्र में दी थी, 2 साल के व्यवधान के पश्चात उसका रिकॉर्ड जब तक हमें याद है टूटा नहीं था, इतने अधिक वो मतलब पढ़ाई में अच्छे थे, तेज थे, पर घर के बड़े होने के कारण वो पढ़ नहीं पाए थे, उन्हें नौकरी तुरंत लेनी पड़ी थी क्योंकि सब कुछ छूट छाट गया था, रिफ्यूजीज की तरह हम यहाँ आए थे। तो दोनों हृदय में था कि चाहे लड़कियां हो चाहे कुछ, हमें जितना चाहे इनको पढ़ाना है,
बहुत अच्छा विचार था।
और तब उन दिनों इतना कोई खास रिवाज भी नहीं था कि लड़कियों को आगे बहुत अधिक पढ़ाने की आवश्यकता है, और हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाना तो बहुत कम हुआ करता था, विशेषकर लड़कियों का। पर हमारे माता पिता दोनों ने मन ठान लिया था कि अगर पढ़ा सके तो आगे पढ़ाएंगे, तो ये चिंता उनके मन में थी क्योंकि हमारी 11वीं हो चुकी थी, हमारे परीक्षा फल आ चुके थे और अब हमें दाखिला लेना था किसी नई कॉलेज में, तो कौन सी जगह सही रहेगी हमारे लिए जहां हम हॉस्टल्स में रहकर अपनी पढ़ाई बिना व्यवधान के कर सकें। तो बड़ी खोजबीन चल रही थी, बड़ी चिंता थी घर में, रोज इसके ऊपर बातें किया करते थे कि कैसे कहां। उन दिनों कम्युनिकेशन भी बहुत कम था, कंप्यूटर ये वेबसाइट कुछ नहीं, पता नहीं चलता था कि कहां पर कौन कौन से कॉलेज है, होम साइंस कहां पर उपलब्ध होगा, साथ में हॉस्टल की सुविधा कहां पर है, तो पूछताछ से ही पता करने का एक माध्यम था। पूरी कोशिश में थे, माँ अपनी तरफ से, पिताजी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में एक रात को मैं जब अपनी पनिशमेंट के अनुसार
डिवाइन डिस्कोर्स पढ़ रही थी
तो खत्म किया मैं जोर जोर से, पूजा रूम में पढ़ती थी, पूजा रूम में कोई सोता नहीं था, माता पिता एक रूम में थे, बाकी बहनें दूसरे रूम में थी, मैं अपना बिस्तर बिछा चुकी थी और जोर जोर से घूम घूम कर पढ़ रही थी ताकि जल्दी खत्म हो जाए। तो उन दिनों डिस्कोर्स कहाँ पर दिया गया है, ये डिस्कोर्स के पश्चात नीचे प्रिंट हुआ करता था, तो नीचे लिखा था उसके श्री सत्य साई आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन, ये लिखा हुआ था। बाय चांस मैंने उसके ऊपर दृष्टि डाली, मैं तो बहुत प्रसन्न होगी, मैंने कहा ले इतनी चिंता कर रहे हैं माता पिता, ये तो भगवान का कॉलेज ही है तो यहीं पर तो जाना ठीक रहेगा। मैं तो इतनी उल्लास से भर गई कि मैंने तुरंत मम्मी डैडी जी बुलाया, घबरा कर दोनों उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का कॉलेज है देखो। तो दोनों उठकर बैठ गए, पूजा रूम में आए, देखा कि सचमुच वहां पर शीर्षक से आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज करके वहां लिखा हुआ था, फॉर वुमेन आनंदपुर लिखा हुआ था। पर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आश्वासन के साथ उस रात सब खुशी से सोए। सुबह रेलवे की एक बुक होती जिसमें मतलब रेलगाड़ियों के आवागमन का समय आदि दिया रहता है, वो खोलकर उसमें मैप्स भी होते हैं।
ढूंढा अनंतपुर, ये अनंतपुर नाम जगह ही नहीं सुना था आपने
कहीं सुना नहीं था, कोई उसके आगे कोई एड्रेस नहीं था, पता नहीं पता था कि ये है कहाँ। तो जी सब के सर झुके हुए हैं और रेलवे मैप पर हम ढूंढ रहे हैं कि अनंतपुर कहाँ है, और विश्वास न करो कितनी बार ढूंढने से हमें कहीं नजर नहीं आया कि अनंतपुर कहीं है। उन दिनों रेलवे इसके मैप में उसका नाम ही नहीं था
क्योंकि वहां से ट्रेन गुजरती नहीं थी, शायद
गुजरती नहीं थी और रुक रुक कर बदल बदल कर आती थी, तो जो गाड़ी वहां से चलकर आएगी कैसे, इस प्रकार से विस्तार से कुछ नहीं दिया हुआ था उसमें। तो फिर वो जो बड़ा शीशा मोटा शीशा होता है वो लाकर भी पूरा चेक किया गया, कहीं पता नहीं चला, बड़े अफसोस में कि अब क्या किया जाए। तो पिताजी ने कहा भगवान से प्रार्थना की, सबने प्रार्थना करी और भगवान ने, पिताजी ने सोचा कि इतने ही एड्रेस से हम डाल देते हैं, देखो इच्छा होगी भगवान की तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। उन्होंने एक पत्र लिखा, ऊपर लिख दिया प्रिंसिपल, और वही पता श्री सत्य साई आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज भवन अनंतपुर, और डाल दिया।
ये नहीं पता किस स्टेट में किस प्रांत में,
कुछ नहीं पता था। और उन दिनों ये सीतारामैया भी हमारे पास नहीं थे, पता चल सकता था। आप बाला में थे, वहां मतलब जो समिति थी बहुत बहुत कम, अंबाला का जो यूनिट था हमारा मिसाइल यूनिट उसमें बहुत कम लोग थे और साइड डिवोटीज बहुत ही कम, 3 ही फैमिलीज थी और उनको नहीं पता था ये अनंतपुर कहाँ है। तो यूं ही ऐसे इतना ही पता लिखकर उन्होंने ये रिक्वेस्ट करते हुए डाल दिया प्रिंसिपल को कि अगर इस प्रकार से कॉलेज है और एडमिशन मिल सकती है तो मैं अपनी लड़कियों को भेजना चाहूंगा। अब पता चलता है कि उन दिनों आंध्र प्रदेश तक पत्र आकर वापिस जाने के लिए 15 दिन लग ही जाते थे क्योंकि तब यात्रा करने के लिए भी 4 दिन लगते थे, हमें वाया हैदराबाद आना पड़ता था, 1 दिन पूरा वहां हमारा व्यर्थ जाता था, आगे की कनेक्टिंग गाड़ी नहीं मिलती थी। तो 10 दिन में एक पत्र प्रिंसिपल से आ गया जी, एप्लीकेशंस के साथ कितने अचरज की बात है।
बिल्कुल,
ये स्वामी के लिए चमत्कार यानी एक और चमत्कार। ये पूरे एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन के साथ ये प्रिंसिपल द्वारा लिखा पत्र, उसमें ये लिखा था कि हमें बहुत प्रसन्नता होगी इंग्लिश में कि तुम अपनी बेटियों को बेशक भेजो और मई के आसपास में एडमिशन्स हो सकती हैं, तो उस हिसाब से अपने आने का तुम अपना प्रोग्राम तैयार कर सकते हो।
तब आपको मालूम पड़ा अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है।
हाँ, आंध्र प्रदेश में तो पूरा पता था ना उसमें। हाँ, तो एप्लीकेशन में पूरा पता था। और तब हमें एक शौक और लगा कि वहां पर होम साइंस तो थी नहीं, साइंस और आर्ट्स के भी सब जो कोर्सेस थे, कॉम्बिनेशन थे, वो सब तेलुगु मीडियम के थे। केवल एक ही एक आर्ट्स का कॉम्बिनेशन था, फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस और एडवांस्ड इंग्लिश का, जो इंग्लिश मीडियम में था उपलब्ध और एक साल पहले से ही शुरू हुआ था।
अच्छा,
तो हमें इन नए विषयों का कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो एक प्रकार से सेटबैक था, घबरा गए कि अब क्या करें, कि होम साइंस हमने तीन साल पढ़ी थी, बाकी सब विषय हम अपनी आठवीं कक्षा में ही छोड़ चुके थे कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, बड़ा भय था मन में। तो पिताजी ने पूछा कि हम जाना चाहेंगे कि नहीं। मेरा तो बिल्कुल क्लियर विचार था कि मैंने अगर पढ़ना है तो भगवान के कॉलेज में ही पढ़ना है, नहीं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं और कहीं जाऊंगी ही नहीं।
आपकी पनिशमेंट का आप पे बहुत अच्छा असर रहा था।
बिल्कुल ठीक कहा। तो मैंने बिल्कुल निश्चित कर लिया था मन में कि मैंने चाहे मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, विषय पढ़ना पड़े, मैंने वही पढ़ना है। पर बड़ी दीदी थोड़ा भय से भरी थी, माता भी थोड़ी भय से भरी थी कि कैसे करेंगे, पर दोनों साथ हैं इसलिए थोड़ी हिम्मत बंधी थी। तो मेरे निर्णय से सबको मानना ही पड़ा और फिर ऐसा हुआ कि मई में पिताजी ने 12 दिन की छुट्टी ली और हमें ले आए, पुट्टपर्ती ले आए। पर दुर्भाग्य से भगवान पुट्टपर्ती नहीं थे उन दिनों, वृंदावन गए हुए थे। पर दो तीन दिन रुककर पिताजी ने कहा कि चलो अब आनंदपुर जाकर पता करें, मतलब हम चाहते थे कि दर्शन करके जाएं, ऐसा नहीं हो पाया, हम आनंदपुर गए। वहां पर जाकर पता चला, एक और अचंभा ये हुआ, मतलब सेटबैक और ये था कि अचानक जो इंटरमीडिएट यहाँ पर 10+2 चल रहा था, वो जो इंटरमीडिएट के की परीक्षाएं थी वो पोस्टपोन हो गई थी। अर्थात वो परीक्षाएं चल ही रही थी।
अच्छा।
तो परीक्षाओं का खत्म होना, फिर रिजल्ट आना, उसके बाद दाखिले होंगे, अर्थात 1.5 महीने का बीच में ये
डिले था
ही था। तो अब पिताजी को समझ नहीं आई कि हमें वापस ले जाएं, कि फिर से वापस आने के लिए इतना समय चाहिए, फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने यूं ही प्रिंसिपल से बात करी कि अगर हो सके तो इन बच्चों को वहां छोड़ जाऊं मैं आनंदपुर। वो मान गई उन्होंने। तब हमारी वार्डन मिस सुबम्मा करके हुआ करती थी, उनसे बात की, वो भी मान गई। तो ऐसा हुआ, हमें 1.5 महीने बिना किसी क्लास के आनंदपुर में रहना पड़ा। पर इसका बहुत ही सुंदर जो फल ये हुआ कि जिस दिन हमारा एडमिशन होना था उस दिन भगवान वहीं थे, आनंदपुर में ही थे।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के महाविद्यालय के अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत सुश्री किरण बाला अरोड़ा जी के अनुभवों का 4वां भाग प्रस्तुत किया गया था। उनसे वार्तालाप कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। ये भेंट वार्ता 25 मई सन 2012 में रिकॉर्ड की गई थी।
भगवान बाबा कहते हैं, तुम्हें यह अनुभव करना चाहिए कि तुम्हारे सभी बुरे विचारों और कार्यों की मुख्य वजह तुम्हारा भोजन है। भोजन की प्रकृति ही तुम्हारी मनोवृत्ति को निर्धारित करती है। जो कुछ खाया जाता है सिर्फ यही भोजन का अर्थ नहीं है, बल्कि इंद्रियों से भी ग्रहण होने वाला वो सब कुछ जो मन में एकत्र होता है वह भी भोजन है।
सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी।
अब प्रस्तुत है आदर्श जीवन आनंद उपवन।
आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत है संत श्री कबीर दास जी के जीवन पर आधारित एक नाटिका से लिया गया एक प्रसंग। श्री भगवान की अलौकिक उपस्थिति में इसका मंचन प्रशांति निलयम में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के बाल विकास के बच्चों द्वारा किया गया था।
कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास ने सामाजिक विसंगतियों पर कड़ा प्रहार किया था, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन सुल्तान, सिपाह सालार, मौलवी, पंडितों और धर्म गुरुओं का आक्रोश, विरोध और अपमान सहना पड़ा था। कबीरदास समाज को धर्मांधता से बचाकर जागरूक करने का कार्य करते थे। वो आंखें खोलकर आडंबर रहित, प्रेम निहित, भक्ति के पक्षधर थे। हिंदू तुरुक की एक राह है, सदगुरु इहे बताई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम कहो ना खुदाई। और एक दिन उनके क्रांतिकारी कवित्व से नाराज होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें कैद करने का फरमान जारी किया।
काशी नरेश, अब तक हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की गई?
हुजूर, संत कबीर को गिरफ्तार करने कोतवाल स्वयं गया है, आता ही हो।
हुजूर, संत कबीर इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं, जरा भी रहमदिली से काम न ले, ऐसी सजा दे कि दूसरे भी सबक लें।
पीर साहब, मगर हम तो सुनते थे कि संत कबीर मसीहा की तरह पूजे जाते हैं।
देख रहे हैं हुजूर, कैसे तनकर खड़ा है, मानो स्वयं बादशाह हो। कितना गुरूर है अपने आप पर, मान अपमान की जरा भी परवाह नहीं। ये कैसी बेअदबी है कबीर साहब, दास दरबार के कुछ कायदे कानून होते हैं, क्या आपको कुछ पता नहीं? सुल्तान हमारे बादशाह हैं, उनके ही रहमो करम पर हम जी रहे हैं, और आपने उन्हें सलाम तक नहीं किया।
खूब कहा शेख तकी साहब, सचमुच आपके खुदा और सुल्तान दोनों ही रहम दिल हैं। एक निरपराध फकीर को कैदी की तरह दरबार में पेश करने का हुक्म देना भी तो रहम दिली का नमूना है। क्यों शेख अकरदी, शेख सकरदी, मानहु वचन हमार, आदि अंत और युग युग देखहु दृष्टि पसार। ना ना नाच नचाए के, नाचे नट के भेस, घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुम शेख।
कबीर साहेब, आप हमारी ही नहीं हमारे दीन की भी तौहीन कर रहे हैं।
सच कहने से आपकी तौहीन होती है तो मैं विवश हूँ सुल्तान, रियाया भूख से त्रस्त है, आपके कारिंदे धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार कर रहे हैं, बेगारी और जबरिया कर वसूली से जनता त्रस्त हो चुकी है, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उस पर यह दावा कि सुल्तान बड़ा रहम दिल है। इस्लाम का अर्थ है समर्पण, इस्लाम ऐसी क्रूरता का संदेश तो नहीं देता है सुल्तान?
सत्य है, इस्लाम धर्म शांति और अमन का संदेश देता है।
फिर किसके कहने पर खुदा के नाम पर बेजुबान प्राणियों की हिंसा की जाती है? कौन कितेब को गाय कटाई, बकरी मुर्गी किन फुरमाई, जितना देखूं आतम घाती, तितना की जम तोड़े छाती। भीतर से क्रूर और अपने अवगुणों को छिपाने के लिए बाहर से विनम्रता का ढोंग। सुल्तान, आपकी बादशाहत तो तब है जब आप रियाया पर होने वाले अत्याचारों को रोकें।
लोग ठीक कहते हैं, आप इस्लाम और हुकूमत के खिलाफ रियाया को भड़काते हैं, क्या आपको जरा भी डर नहीं लगता?
नहीं सुल्तान, मैं झूठे आडंबर और अत्याचार के विरुद्ध लोगों को जगाता हूँ।
आप खुदा और ईश्वर दोनों का मजाक उड़ाते हैं, पंडित और मौलवी दोनों को गाली देते हैं।
काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेकर पीसा खाए। सच कहता हूँ मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, दोनों अपने अपने ईश्वर और खुदा की बात करते हैं, इंसान और इंसानियत की बात कोई नहीं करता क्यों? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं, मानव सेवा से बड़ी कोई इबादत नहीं सुल्तान।
आपकी बातों में तथ्य है, सचमुच खुदा और ईश्वर के बीच में इंसान गुम हो गया है।
हुजूर, इनकी बातों में ना आइए, बातों में इनसे कोई जीत नहीं सकता। शीघ्र सजा का फरमान सुनाइए।
हाँ सुल्तान, आपके पीर साहब ठीक कहते हैं। जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाती है और विवेक शून्य हो जाता है, वहाँ हिंसा ही काम करती है।
हुजूर, क्या सोच रहे हैं? कबीर काफिर है, आप सजा दीजिए, इससे दीन की खिदमत हो। देखिए, ये दोनों धर्मों के बारे में क्या कहते हैं। निंदय तीरथ निंदय वेदु, निंदय नवग्रह सूरज चंदु, निंदय सिंकर निंदय माई, निंदय साई गणपत राई, निंदय सकल धर्म की आशा, सर दर्शन अरु बारह मासा, ऐसी विधि सब लोग बिगारा, हिंदू मुसलमान सुन्यारा, ताते हमें न माने कोई, जब लग जुलहा काशी हुई।
ये कैसा शोर है काशी नरेश?
हुजूर, दरबार के बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है, ऐसा लगता है रियाया उग्र हो उठी है, कहीं बगावत न करते।
बड़ी अजीब बात, आप लोग कहते हैं कि संत कबीर से हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हैं, मगर यहाँ भीड़ तो उनकी जय जयकार कर रही है।
नहीं हुजूर, ये कुछ सिर्फ फिरे लोग हैं, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा।
पीर साहिब, माना संत कबीर इस्लाम धर्म के कर्मकांड के विरोधी हैं, पर उनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए करुणा है, उनकी निर्भीकता ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। ना जाने क्यों हमें भी लगता है कि हम सब गलत हैं, मुझे तो कबीर अल्लाह के दूत नजर आते हैं। कोतवाल, जाओ संत कबीर को आदर से बाहर ले जाओ। कबीर साहेब, जाते जाते ये तो बता दीजिए कि ईश्वर और खुदा कहाँ है, उसे कहाँ ढूंढें, वह कहाँ मिलेगा?
मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कबीर की निर्गुण भक्ति धारा समाज में जंगल की आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित और धर्मगुरु उनके सत्संग में छिपकर वेश बदलकर और खुल्लम खुल्ला जाने लगे। कई विद्वान कबीर से शास्त्रार्थ का मन बनाकर आते और सत्संग सुनकर चले जाते थे। एक बार की बात है, तमिल क्षेत्र के पंडित सर्वानंद, जिनको सर्वजीत के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि उन्होंने
बधाई हो सर्वजीत, तुमने दक्षिण और उत्तर के सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे सामने सिर उठाकर अपनी विद्वता का ढिंढोरा पीट सके।
हाँ मित्र, जब यह सोचता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा सके, तो मैं स्वयं में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मगर मेरी माँ की नजरों में मैं अभी भी एक अपरिपक्व बच्चा हूँ। कहती है कि वाक जाल से किसी को निरुत्तर कर देना विद्वत्ता नहीं।
बेटा, काशी के संत कबीर के पास अनुभव ज्ञान है जो वेद शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं उनके सामने बड़े बड़े पंडित और पीर औलिया निरुत्तर हो जाते हैं। जिस दिन तुम उनको परास्त कर दोगे, उस दिन मैं तुमको सर्वजीत समझूंगी।
आपके चरणों की सौगंध है माँ, कबीर को परास्त करके ही लौटूंगा। यदि कबीर को शास्त्रार्थ में पराजित न कर सका तो धिक्कार है मेरी विद्वता को। चलो पूर्णानंद, कबीर को हराए बिना मुझे अब चैन नहीं मिलेगा।
चलो अब विजयी होकर ही लौटेंगे।
कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए।
वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए बिना परम पिता परमेश्वर का अनुसंधान कैसे होगा कबीर साहेब?
जब तक वेद शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार भीतर है, आत्मा व परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। जब बाहर की दौड़ खत्म होगी, अपने भीतर भगवान के दर्शन होंगे।
तो क्या हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या व्यर्थ थी?
भूखे पेट भजन नहीं होता। वेद शास्त्रों के घोड़े पर बैठकर आप उसे कैसे पा सकते हैं?
वेद शास्त्र कहते हैं हम सब उसी परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, तथा यह सारा संसार उनकी रचना है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
वेद कितेब स्मृत नहीं संजम, नहीं जीवन परिछाई, बाग निमाज कलमा नहीं होते, रामह नहीं खुदाई। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ ईश्वर की इच्छा से आए हैं या अपनी इच्छा से?
निश्चय ही मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, किंतु शायद ईश्वर की यही इच्छा थी।
कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाह, शीस उतारे भुई धरे सो पैठे घर माह। सर्वानंद, आपसे भिन्न दूसरा कोई ईश्वर नहीं। आपने निश्चय किया कि कबीर को हराना है और आ गए, और उसकी इच्छा से यदि आपकी हार होनी है तब?
यह जीव तो असमर्थ और अल्पज्ञ है, इसलिए समर्थवान परमेश्वर का आश्रय खोजता है।
यह आपका भ्रम है, यह जीव ही शिव है। जीव स्वयं कर्ता और भोक्ता है। इस संसार में जड़ और चेतन दोनों ही सत्ता विद्यमान है। जड़ में शक्ति है और चेतन में भी, दोनों के संयोग वियोग से यह संसार गतिमान है।
जब मैं शिव हूँ तो बाकी लोग कौन है?
वे भी शिव हैं।
और आप?
मैं भी वही हूँ। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई।
फिर मैं दुखी और आप अपूर्ण क्यों हैं?
अज्ञानवश। जिस दिन आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा और अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाएंगे, उस दिन अपूर्णता का एहसास खत्म हो जाएगा, परम सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि आपका स्वरूप ही आनंदमय है। कबीर रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए।
हमारे वेद शास्त्र में लिखा है कि
मेरा तेरा मनवा कैसे होए एक रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो अरुझाई रे। अपने मन को निर्मल करो, दूसरों को जीतने की कामना छोड़कर अपने भीतर के अहंकार को जीतो, दूसरों को प्रेम बांटो, यह प्रेम ही सब कुछ है। वेद नहीं, शास्त्र नहीं, कुरान नहीं, जप नहीं, माला नहीं, तस्बीह नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, ये प्रेम सारे बाहरी आचारों की पहुंच से बहुत ऊपर है। सर्वानंद, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
इस तरह कबीर की विचारधारा आज के युग में सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वर्तमान में कलयुग के अवतार भगवान श्री सत्य साई बाबा का हमारे लिए सिर्फ यही संदेश है। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन जो हमारे स्वामी हमें बताते हैं वो है लव ऑल सर्व ऑल।
अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत नाटिका में आपने संत श्री कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग सुना।
प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका स्वागत है। आज के इस प्रसारण में हम प्रशांति निलयम के निर्माण के पूर्व की घटनाओं को सुनेंगे। इसके साथ ही बाबा द्वारा चित्रावती नदी के तट पर एक भक्त महिला को उसकी वर्षों पुरानी खोई हुई जपमाला को रेत से निकालकर पुनः प्रदान करने की दिव्य घटना का विवरण सुनेंगे।
तिरुमल राव आदि द्वारा स्वयं निरीक्षण कर बनवाया हुआ मंदिर थोड़े ही महीनों में भक्तगण की संख्या बढ़ने से पर्याप्त नहीं हो सका। यात्रियों का प्रवाह देखकर व्यवस्थापक अवाक ही हो गए। रोग पीड़ितों के लिए बाबा की विभूति संजीवनी ही बन गई। पिशाच ग्रस्तों को उनकी एक दृष्टि महामांत्रिक के कवच के समान बन गई। निंदा के पुजारी बाबा के ही पुजारी भक्त बन गए। कसौटी लेने आए हुए लोग स्वयं ही कसौटी करवाकर स्वशुद्धि की याचना करने लगे। पांडित्य का बोझ सिर पर ढोकर आए हुए लोग अपने अहंकार को छोड़कर सिर पर उठा लेते। साधकों को साधना मार्ग के रहस्य का ज्ञान हो जाता। अशांत और निराश लोग शांति एवं उन्नति पाते। यही है उस छोटी उम्र में ही बाबा का किया हुआ जादू टोना। एक दिन मंदिर से तिलक लगवाकर बाबा अकेले ही चित्रावती पार कर संध्या के समय दूर की पहाड़ी पर एक चट्टान पर जा बैठे थे। वहीं समीप की झाड़ियों से अपनी लूट की कमाई बांटते हुए चोरों की क्रोध भरी चर्चा बाबा ने सुनी। अचानक अपने समक्ष आविर्भूत हुए बाल शिव को देखकर वे सब घबराए और बाबा के पैर पड़े। संकल्प मात्र से सृजन किया हुआ विभूति का प्रसाद बाबा ने उन्हें दिया। बाबा के उपदेश से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने न्याय मार्ग से ही कमाई कर उधर निर्वाह करने का निश्चय किया और बाबा के चरण स्पर्श कर नीति मार्ग पर चलने का बाबा को वचन दिया। बाबा के साथ ही वे पुटपर्ती लौटकर वहीं बस गए। उनमें से एक को बाबा ने मंदिर का चौकीदार बनाया। बाबा के द्वारा केवल एक दृष्टि मात्र से हृदय परिवर्तन कर देने की महिमा के लिए अन्य उदाहरण की क्या आवश्यकता है। प्रातः संध्या के भजन के लिए उस मंदिर का हॉल अपर्याप्त था, इसी कारण आगे के मैदान में एक शेड बनवाया गया। बाबा का निवास स्थान ये छोटा कमरा एक किष्किंध ही प्रतीत हुआ। इस कारण पिछली ओर के आंगन में उनके लिए दो कमरे और बनवाए गए। बिजली से मंदिर सजाने के लिए एक डायनामो भी मंगवाया और उसके लिए एक इंजन रूम भी। इतना सब करने के पश्चात ही सब सुविधाजनक हुआ। उस पिछली ओर के कमरे में ही बेंगलोर के डॉक्टर पद्मनाभन के छोटे भाई की हारिया रोग निवारणार्थ शल्य चिकित्सा की गई थी। वह भी कैसे, अपने दिव्य संकल्प मात्र से सृजन किए हुए अत्याधुनिक शस्त्रों द्वारा। उन दिनों पिछली ओर के आंगन में ही भक्त समूह के बीच एक लोहे की चारपाई बिछवाकर बाबा सोया करते थे। रात को बहुत समय तक भक्तों से संभाषण कर उन सबको बाबा अनुग्रहित करते। एक रात लगभग 10 बजे बाबा चारपाई से उठ बैठे और कहने लगे, मुझे मद्रास जाना है एक बालक की रक्षा के लिए। बाबा ने कहा कि स्वयं बनाकर दी हुई ताबीज कहीं खो डाली है और वही ताबीज उनके पास आ गई है। तुरंत ही उसकी बांह पर न बांधने से दुर्घटना होगी। तब कुछ भक्तों ने कहा, नहीं स्वामी, अब इसी समय यहां शरीर छोड़कर वहां उस बालक को देने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है। एक भक्त कल मद्रास ही जा रहे हैं, वे उस बालक को ताबीज पहुंचा देंगे। बाबा मान गए, किंतु मुझे तो उस बालक को होने वाले कष्ट के स्मरण में नींद ही नहीं आती। यूं कहकर बाबा ने उस ताबीज को वहां सोए हुए श्री शेषगिरी राव को सौंप दिया। उन्होंने उसे रुमाल में लपेटकर कमर में ही बांध लिया। अचानक बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। वही हंसी सुनकर वहां सब जाग पड़े। क्यों स्वामी, क्या हुआ, कहिए भगवान कहिए, भक्तों ने बार बार पूछा। कुछ नहीं, शेषगिरी राव को जगाओ, तब सब स्पष्ट होगा, बाबा बोले। जब उसे जगाया गया तब बाबा ने कहा, कहां है वो ताबीज, मेरे पास दो। कमर में लपेट कर बांधे हुए उस रुमाल को खोल बिछाकर उलट पुलट कर देखते हैं, पर ताबीज अदृश्य। बाबा हंसते रहे। मैंने उसी समय वहां ले जाकर बालक की बांह पर वह ताबीज बांध दी है, बाबा ने कहा। शेषगिरी राव चकित हुए और अन्य भक्त मूक हो गए। बाबा की इस दिव्य महिमा से उस दिन सभी अवगत हुए। जिसे आजकल लोग पुराना मंदिर कहते हैं, उस मंदिर को भक्तगण कभी भी भूल नहीं सकते। उनके जीवन में वो पुराना मंदिर आनंद की खान है। सदा बाबा उसके बीच ही रहते, उनसे ही मिलजुल कर प्रतिदिन दोनों समय के भजन काल में भक्तों को सैकड़ों नए नए भजन गीत रचकर सिखाते। कितना सुशोभित एवं संतोषकारक वो समय था। भक्तों के साथ संभाषण कर, सद्बोध का उपदेश देकर, उनको आगामी भय से संभाल कर शिक्षण दिया हुआ वो विद्यालय, ऐसे पुराने मंदिर का उन्हें कैसे विस्मरण हो सकता है। उसी पुराने मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम भाग एक के लेखक श्री एन कस्तूरी भी पहले पहल पुट्टपर्ती में बाबा के दर्शन से कृतकृत्य हुए। सन 1947 में उस संध्या के समय वे अपने भक्त वृंद के साथ चित्रावती नदी तट को पधारे। वो महान सौभाग्य। रेत राशि पर बैठकर कुछ चर्चा चल रही थी। उस समय बाबा की दृष्टि वहां की एक वृद्ध नारी भक्त पर पड़ी। आप क्यों व्यर्थ तड़पती रहती हैं? मन की उलझन सुलझाने के लिए जब ही एकमात्र साधन है, क्या आपको याद नहीं? बाबा ने उस विधवा भक्त से पूछा। उसके बाद बाबा ने हंसकर कहा, अच्छा, जप माला के अभाव से ही आप चुप हैं? बाबा ने बैठे बैठे ही रेत में हाथ घुमाया। ये लो जप माला। भविष्य में माला नहीं, ये बहाना मत बनाना, यूं कहकर पास बुलाया। उसने प्रसन्न मुख से हाथ आगे बढ़ाया। तब बाबा ने पूछा, ठहरिए, लेने के पूर्व इस माला को जांच कर देखिए, आप इसे पहचानती हैं? उसकी आंखें भर आई, आश्चर्य से बदन कांप उठा, भक्ति भार असहनीय हुआ और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी। ये तो मेरी पुरानी जपमाला है स्वामी, वो बोल उठी, आपकी ही है, कहां खोदी थी, कब बताइए? बाबा ने परिप्रश्न किया। बेंगलोर में ही खो गई थी स्वामी, लगभग 4 वर्ष पूर्व। उनका ये उत्तर सुनकर सबने साष्टांग प्रणाम किया। 4 वर्ष पूर्व बेंगलोर में खोई माला उस दिन संध्या समय चित्रावती नदी के रेत राशि से निकालकर श्रीमती जानकी चंद्र को प्रदान की। इस महान घटना को श्री कस्तूरी जी सहित 40 लोगों ने उस दिन देखा। पुट्टपर्ती बाबा के मंदिर में आते ही थोड़े ही समय में उन्हें यह दुर्लभ सौभाग्य मिला। लोगों के समूह के बीच बाबा का ये वास सबको नहीं भाया। एक नवीन मंदिर बनवाने का भक्तों ने निश्चय किया। उत्सव त्योहार आदि के लिए ये मंदिर, आगे का शेड, बाहर का आंगन और आसपास का मैदान भी कम पड़ा। इसी कारण बाबा ने भी अपनी सम्मति दी। प्रशांति निलयम साकार हुआ। जय साई राम।
इस प्रकार हमने सुना कि बाबा ने किस प्रकार अनैतिक कार्यों से जीवन यापन करने वाले कुछ चोरों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें मंदिर का चौकीदार बना दिया। एक भक्त की कई मील दूर दिव्य रूप में जाकर ताबीज देकर रक्षा की और प्रशांति निलयम बनाए जाने का विचार साकार हुआ। साई राम।
गान सरिता में आपका स्वागत है। अब हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की एक सुमधुर वंदना। इस वंदना में भगवान श्री गणेश जी के दुख हरता तथा सुख करता स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। गीत में भावपूर्ण रूप से श्री गणेश जी के विभिन्न नामों का भी सुरमयी वर्णन किया गया है। भावप्रिय व गान प्रिय भगवान को भक्ति से भरा हुआ सुमधुर गायन तो बहुत प्रिय होता ही है। प्रस्तुत है इसी भाव के साथ गान सरिता की ये प्रस्तुति, जिसके बोल हैं, प्रथम पूज्य श्री गणेश, हे जगवंदन।
गणेश हे जगवंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश। बुद्धि के तुम प्रदाता, दुख के तुम हरता।
बुद्धि के तुम प्रदाता, दुख के तुम हरता।
हे सरल सहज भगवन तुम हो सुख करता।
हे सरल सहज भगवन तुम हो सुख करता।
संकट हरने वाले हे गौरी नंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश। शिव नंदन गौरी सुत तुमने ये सिखाया।
शिव नंदन गौरी सुत तुमने ये सिखाया।
मात पिता में जग सारा तुमने बतलाया।
मात पिता में जग सारा तुमने बतलाया।
जय शुक्लांबर गणनाथा जय दुख भंजन। जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश। प्रथम पूज श्री गणेश हे जगवंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
प्रथम पूज श्री गणेश हे जगवंदन, जय लंबोदर गजानन शत शत वंदन।
जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश।
सरिता में आनंद से भर देने वाली इस प्रस्तुति को लिया गया है साई संस्कार गीतमाला भाग दो से, जिसे तैयार किया है श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने। इस गीतमाला का विमोचन भगवान के श्री चरणों में साईं कुलवंत हॉल में बाल विकास कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में 5 जनवरी 2019 को समर्पित किया गया था। इस भक्ति गीत को श्री सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम की कक्षाओं में तथा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य गीत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।
इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।